शांति, ओम शांति। 2021 उसमें भी बाबा का ये अव्यक्ति मास, तपस्या मास, वरदानी मास के रूप में हम सबने मनाया। देश और विदेश में चारों तरफ बहुत अच्छी तपस्या की लहर चली है, चल रही है। बहुत सी बहनों ने मन का मुख का मौन भी रखा, अखंड तपस्या के कार्यक्रम भी सेवा केंद्रों पर चले हैं। इस वर्ष की एक प्लानिंग है हमारी बड़ी बहनों की मीटिंग में, एक बहुत सुंदर सुझाव निकला था कि पूरा ही वर्ष हम सब इस 2021 में तपस्या करेंगे और उसके लिए मधुबन से समय प्रत समय हर मास तपस्या की पॉइंट्स जाएंगी, भेजी जाएंगी। हम सबका यही लक्ष्य, तपस्या केवल बैठ करके दो चार घंटे की नहीं है, लेकिन तपस्वी जीवन है, जीवन माना जो सदा काल की हो। क्या इसके पीछे भाव है, क्या हम सब करेंगे? तपस्या का आधार है त्याग, और त्याग का आधार है वैराग्य। हम सब जानते हैं वैराग्य के बिना कोई चीज का त्याग संभव नहीं है। कोई को भी जब वैराग्य आया किसी चीज से, तो उसने एक धक से त्याग कर दिया और त्याग के बाद उसने तपस्या शुरू की। हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने इस बेहद की पूरी दुनिया से वैराग्य दिलाया, हमारा शमशानी वैराग्य नहीं है, हद का वैराग्य नहीं है, बेहद का वैराग्य है। हम सब जानते ये संसार असार है, इसमें कोई भी अभी सार नहीं रहा, इसलिए संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न कर सके। अंदर से न किसी से राग है, न किसी से वैर है। जब ऐसी वैराग्य की स्थिति, आंतरिक स्थिति रहती है, तो देह अभिमान का त्याग बहुत सहज हो जाता है। सबसे बड़ा त्याग तो देह अभिमान का त्याग है। कितने प्रकार से आत्मा इस देह के अधीन हुई है हम सब जानते। पहले देह भान आया, फिर देह भान ने अभिमान ले आया, और अभिमान के होते फिर अहंकार आ गया, देह अहंकार। जितना हम सब इस देह भान का त्याग करते हैं, उतनी हमारी आंतरिक तपस्या आत्म अभिमानी बनने की शुरू होती है। वास्तव में आत्म अभिमानी स्थिति बनाना ही सच्ची तपस्या है। देहभान समाप्त हो जाए, आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों का आधार ले, कर्म करे और कर्म बंधन से न्यारी हो जाए, कोई भी कर्म बंधन में बांध न ले। जब इतनी आंतरिक तपस्या हम आत्मा करते हैं, अपने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करते और न्यारे हो जाते हैं। जो बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा एक तरफ करण करावन हार है, हम बच्चों से करा रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आत्मा करावन हार बनकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। ये अभ्यास निरंतर चलता रहे, ऐसी तपस्या अगर हम करते रहते हैं तो कर्म छोड़ करके तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास के लिए बाबा ने चांस दिया और हम सब ने किया है, कोई ने 4 घंटा, कोई ने 8 घंटा रोज तपस्या की है बैठ करके। बहुत अच्छे समाचार सब बच्चों के, बाबा के बच्चों ने चार्ट भी भेजे हैं, भेज रहे हैं। 108 घंटे का भी लक्ष्य कई स्थानों पर रखा और हमारे इस ग्रुप ने तो 153 घंटे का लक्ष्य रखा, और लक्ष्य के प्रमाण सभी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। आप सब जानते हो इस वर्ष बाहर की कोई भी नए स्टूडेंट्स की सेवाएं नहीं है, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बने हैं, वार्षिक मीटिंग भी इस बार नहीं रखी गई है, क्योंकि चारों तरफ भट्टी योग की तपस्या की लहर है। पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, हमारे शांतिवन में एक के बाद एक ग्रुप आ रहे हैं और सब बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। शायद तपस्या से कोई नई सेवा की योजना बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे स्थापना के समय सिर्फ ओम की ध्वनि देते थे, ओम कहते थे, पूरी सभा ही ट्रांस में चली जाती थी, साक्षात्कार होते थे सतयुग के श्री कृष्ण के, और वातावरण में ही ओम की ध्वनि छा जाती थी। अगर हम ये सब तपस्या करते करते अपनी जीवन तपस्वी बना लेंगे तो मैं समझता हूं जब थोड़ा भी आवाज में आएंगे तो सामने वाली आत्मा आवाज की दुनिया से परे चली जाएगी। अभी वो सेवा जरूरी है, आवाज में आए, कुछ भी बोलें, 2 शब्द भी बोलें, तो वो हमारे बोल सामने वाली आत्मा को इस आवाज की दुनिया से पार अपने अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा करा दें। अब ये सेवा प्रारंभ होगी तब जय जयकार का नारा लगेगा। शायद इसीलिए बाबा ने इस वर्ष हम सबको ये बहुत सुंदर गोल्डन चांस दिया है। कुछ प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से हम सब तपस्वी जीवन बनाएं, उसके लिए मैं आपको तपस्या करने वाली आत्माएं किस विधि से तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करती रही हैं, बाबा ने कई बार इसका बहुत सुंदर विस्तार किया है। एक तरफ तपस्या करने के लिए स्थान ढूंढे जाते हैं और विशेष तपस्वी आत्माओं ने 3 स्थान चुने। पहला तो आपने देखा होगा किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने जो तपस्या की वहां की, आपने देखा होगा सारनाथ में, गया में वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की। और भी कुछ तपस्वी आत्माओं की जब जीवन कहानी हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो कुछ तपस्वियों ने गुफा में बैठ के तपस्या की, एकदम एकांत की गुफा में चले गए, और कुछ एक ने हिमालय की चोटी और पहाड़ियों पर तपस्या की। तपस्वी आत्माओं ने भिन्न भिन्न स्थान चुने और स्थान के साथ साथ आसन भी चुने, बिना आसन पर बैठे हुए तपस्या नहीं की। पहले हम स्थान की बात करते हैं, हम तपस्वी आत्माओं को ये तीनों स्थान मिले हुए हैं। बाबा ने हम सबको कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया है और वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई तपस्वी आत्माओं को हम सबने देखा है। कल्प वृक्ष का चित्र जो बना है, उस कल्प वृक्ष के चित्र में बीज रूप बाबा गुप्त हैं, जड़ों में पूर्वज आत्माएं हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा, आदि माता कामधेनु मां, जगत अम्बा सरस्वती और उनके साथ कुछ बच्चों को तपस्या करते हुए दिखाया है। शायद इसी की यादगार में लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या शुरू की है। हम सब बाबा के बच्चों के पास पूरे वृक्ष का ज्ञान है और बाबा कहते हैं आप सब बच्चे इस वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो। इस पूर्वजपन के समान में स्थित हो करके इस वृक्ष को शक्तियों का जल दो, सकाश दो, पूरे वृक्ष की सेवा करो। चलते फिरते जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस इस पूरे वृक्ष के जड़ों तक, पत्तों तक, एक एक पत्ते तक, एक एक डाल टाली तक हमारी सकाश पहुंचती है। ये बहुत गुप्त सेवा है और बाबा हम सबको कहते हैं नॉलेज फुल, वृक्ष की पूरी नॉलेज बुद्धि में रख करके तपस्या करो। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका वृद्धि हुई, विस्तार हुआ और कैसे अभी ये वृक्ष बिल्कुल जड़जड़ी भूत है, अपने अंतिम समय पर पहुंच गया है। और वृक्ष में बीज से जब बीज आ जाता है लास्ट में, तब वृक्ष पूरा होता है। तो अभी वो समय है जब बीज रूप बाबा आ गए हैं और इस पूरे वृक्ष का परिवर्तन करना है, इसी से कलम लगानी है, इसको खत्म नहीं करना है। कोई वृक्ष को जला करके खत्म नहीं कर देना, क्योंकि सृष्टि अनादि अविनाशी है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे इसी पुराने वृक्ष के द्वारा नए वृक्ष की कलम लग रही है और हमारी तपस्या के बल से वो नई सृष्टि की रचना हो रही है। तो वर्तमान समय हम सब इस पूरे वृक्ष के ज्ञान को इमर्ज करके, इस वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, इस सामान में रह करके नॉलेज फुल बन करके पूरे वृक्ष को इमर्ज करें, उसको चलते फिरते सकाश दें, शक्तियों की रोशनी मिले, लाइट मिले, उसका हम अभ्यास करते रहें। दूसरा, बाबा ने हमें बहुत अच्छी गुफा दी है और वो गुफा भ्रकुटी की गुफा है, अंतर्मुक्ता की गुफा है। जब इस गुफा के बीच में आत्मा बैठ जाती है तो इस देह भान से न्यारी बन जाती है। आत्मा इस शरीर से अलग है, ये शरीर अलग है, इसका एक बहुत सुंदर अभ्यास चलते फिरते करते रहें कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप, इस भ्रकुटी की गुफा में बैठी हुई तपस्वी आत्मा हूँ, ये चिंतन है। और ये चिंतन करते करते हम उसका स्वरूप बन जाए। योग की संपूर्ण स्थिति देह और देही का अलग अनुभव होना, ये अलग है, मैं अलग हूं, इसका अभ्यास हम इस गुफा में बैठ करके करते चले। ये तपस्वी जीवन की विधि है, आधार है। और तीसरा, बाबा कहता है बच्चे सबसे ऊंची चोटी परमधाम घर में आकर बुद्धि बल से मेरे साथ बैठ करके तपस्वी मूर्त बन करके इस पूरे उल्टे वृक्ष को लाइट दो, सकाश दो। जैसे बीज रूप बाबा ऊपर है, परमधाम में है, वृक्ष नीचे है, ऐसे ही हम बाबा के साथ उस ऊंची स्थिति में बैठ करके तपस्वी मूर्त आत्मा इस पूरे वृक्ष को लाइट दे रहे हैं। ये भिन्न भिन्न अभ्यास हैं, क्योंकि योग कोई एक विधि पूर्वक करेंगे, एक तरह से करेंगे तो बोर हो जाएंगे। कब तक करेंगे, सोचेंगे बस हो गया। लेकिन वैरायटी और नवीनता अगर है तो हम सदाकाल कर सकते हैं। तो ये तपस्वी जीवन में ये तीन रूप से, तीन स्थान चुन करके हम भिन्न भिन्न तरह से तपस्या करते रहे। अब आसन कौन से हैं? एक तो तपस्या करने वालों को कमल फूल का आसन दिया है। हम सब बाबा के बच्चे कमल आसनधारी हैं। कमल इतना हल्का फूल है, उस पर बैठना तो संभव नहीं है स्थूल रूप में, लेकिन ये यादगार निशानी है कि हमारी जीवन में इतना हल्कापन हो, किसी भी प्रकार का बोझ और बंधन तपस्या में रुकावट डालता है। हम सब कमल आसनधारी बन करके इतने लाइट बने, इतने हल्के हो जाएं, कोई भी कर्म बंधन का बोझ, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का बोझ, कहीं भी कोई संबंधों में मोह ममता का बोझ, कोई कड़े संस्कारों का बोझ, कोई विशेष वस्तुओं की आकर्षण का बोझ, अगर इनसे आत्मा मुक्त है, आकर्षण से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, हल्की है, लाइट है, तो तपस्या निरंतर हो सकती है। अगर कहीं पर भी कोई बोझ, कोई बंधन आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, माना मैं आत्मा कमल आसन पर नहीं हूं, और कमल आसन पर नहीं तो ये जीवन तपस्वी जीवन नहीं बन सकती। इसलिए जीवन तपस्वी बन जाए तो हम सब अभ्यास करें, हम सब के बीच में रहते, कर्म करते, हर बात देखते सुनते न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास करें। कोई भी बंधन आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे और कोई बोझ आत्मा को नीचे की स्थिति में न ले आए, क्योंकि बोझ होगा तो कभी भी उड़ती कला का अनुभव करना संभव नहीं है। इसलिए चेक करना चाहिए किसी भी प्रकार का बोझ। अभी सेवाओं के बोझ से तो बाबा ने हल्का किया है, बाहर की सेवाओं के बोझ से, लेकिन फिर भी कई हिसाब किताब हैं, कई कर्म बंधन हैं, कई कड़े संस्कार हैं, कई संबंधों की रस्सियां जुड़ी हुई हैं, बंधन के रूप में खींचती हैं। हम सबको चेक करना चाहिए कि हम सब तपस्वी मूरत आत्माएं किसी भी बंधन में, किसी भी बोझ के नीचे दबी हुई ना हो, बंधी हुई ना हो, तब तपस्या निरंतर की जा सकती है। दूसरा एक आसन है साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन, साक्षीपन की स्थिति का आसन। अभ्यास करो चलते फिरते अपने, कई बार न चाहते हुए भी आत्मा से कुछ न कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं, हो जाते हैं, कहते हम चाहते नहीं थे, हो गया। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी कोई न कोई रुकावट आ रही है, कारण क्या है? कोई अगला पिछला हिसाब किताब जो आत्मा को न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच लेता है। और विशेष करके आप देखेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा योग है, ज्ञान और योग पर फुल अटेंशन है, फिर भी हिसाब किताब छोड़ते नहीं। उसके दो कारण दिखाई देते हैं, एक है संबंध और दूसरी है सेवाएं। संबंध और सेवाएं कई प्रकार से बंधन बन जाते हैं, और आत्मा संबंध के बिना तो यहां सृष्टि पर पार्टी नहीं बजा सकती। अब ये संबंध चाहे देह से हैं, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार से हैं, चाहे किसी साधनों से हैं, संबंध हर एक आत्मा का कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सबको संबंधों के बंधन को काटना है, स्वतंत्र बनना है। कोई भी संबंध का बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे, ये तपस्या है। तपस्या के लिए तीन बातें जरूरी है, वो मैं सुना देता हूं। पहले एक है लगन की आग, लगन की अग्नि, लगन बाबा के साथ ऐसी है, जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको लगन की तरह से, अग्नि की तरह से उसको सामने रखें। लगन की अग्नि हमें तपस्वी बना देगी। दूसरा है दृढ़ता का संकल्प। बाबा कई बार कहते हैं तपस्या क्या है, संकल्पों की दृढ़ता, जो सोच लिया वो करना ही है, होना ही है, कमजोर संकल्प ना हो। कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कई बार कमजोरी का एक कारण जो पता चलता है क्या है, हम दूसरे कमजोर को देख लेते हैं, उसके संग का रंग लग जाता है। जब उसकी कमजोरी को देखते, इसके साथ ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया, इतना अच्छा पुरुषार्थी, इतना अच्छा योगी, इसके साथ भी ऐसा हो गया, और उसको देखने से हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, देखना है तो एक बाबा को ही देखना, किसी देहधारी को नहीं देखना। अगर संकल्पों में दृढ़ता लानी है, दृढ़ता ही तपस्या है, तो दृढ़ता तभी आ सकती है जब बाबा को ही देखें, जो पास हुए हैं उनको ही देखें, जो किसी भी तरह से हारे हैं, कोई परिस्थितियों में परेशान हुए हैं, उन आत्माओं पर नजर डालें। तो जहां दृढ़ता है वहां तपस्या है, जहां लगन है वहां तपस्या है, और जहां एक वृत्ता स्थिति है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, संगम युग पर जिस आत्मा ने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, अंदर से आता है मेरा तो एक दूसरा ना कोई, कहीं पर भी लगाव झुकाव प्रभाव नहीं है किसी भी आत्मा का, तब वो तपस्या कर सकती है, जीवन तपस्वी बन सकती है। तो इन तीन बातों को ध्यान पर रखते हुए हम कमल आसनधारी बने, और साथ साथ साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन पकड़ करके रखें। हर आत्मा के पाठ को देखो, बहुत अच्छे से अच्छा पाठ बजा रहा है, नेगेटिव में भी अच्छा ही देखो, इसका ये पाठ है। थोड़ी मेहनत नहीं, कहने में तो सहज लगता है, लेकिन मेरे साथ कोई गलत कर रहा है और फिर भी मैं अच्छा देखूं, उसके प्रति मेरे नेगेटिव संकल्प न चले। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा तो उदाहरण रहे हैं, दादियां भी रही हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए लोग कितना विरोध करते थे, कितना गालियां देते थे, कितना उल्टा बोलते थे, और बाबा हमेशा मुस्कुराते कहते, बच्चे ये निर्दोष हैं, ये परवश हैं। बाबा ने कभी भी उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखी, कभी उनके लिए कोई उल्टे शब्द नहीं बोले, कब समझाने के लिए कोई एक दो बात कह भी दी, लेकिन कभी भी उनको उस दृष्टि से नहीं देखा, बच्चे हैं, बच्चे हैं, परवश हैं, निर्दोष हैं। गाली देने वालों को भी बाबा कहते, बच्चे कोई बात नहीं, अभी गाली दे रहे हैं ना, एक दिन एक गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, संकल्प नहीं चलाओ, सोचो नहीं, इनको पता ही नहीं है किसका ज्ञान है, कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, अनजान है, अनजान पर गुस्सा नहीं किया जाता, बदला नहीं लिया जाता। कितनी बेहद की भावना से बाबा ने अपनी स्थिति को एक रस बनाया। तो एक रस स्थिति का आसन, साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन और कमल आसन। जिन आत्माओं ने इस आसन को कभी छोड़ा नहीं है, उसी आसन पर रहे हैं, वो तपस्वी जीवन बना सकते हैं। अगर हम तपस्वी जीवन बनाना चाहते, दो चार घंटे योग करना अलग बात है, लेकिन एक जीवन ही ऐसे लगे, क्योंकि मैंने आपको सुनाया है कि शुरू शुरू में मेरे से दीदी जी ने एक प्रश्न पूछा था, तुम ब्रह्मा कुमार हो? कहा दीदी शायद कोई गलती हो गई, क्यों पूछ रही है? कहा दीदी ब्रह्मा कुमार हूं। कहती ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं, सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ब्रह्मा कुमार बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार बनना, ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार बनो, एक एक इंद्री को तपा दो, इनकी चंचलता समाप्त हो जाए, एकदम दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, बोल पवित्र, जरा भी इन इंद्रियों में उत्तेजना न रहे, चेक करना सभी, हम सब बाबा के बच्चे इंद्रिय जीत बन जाएं, अपनी एक एक इंद्री पर कंट्रोल हो, दृष्टि एकदम शुद्ध है, पवित्र है, हर एक को हम आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, स्वभाव में एकदम सरलता है, नम्रता है, बोल में मधुरता है, कभी किसी के प्रति जोश के आवेश के कटु बोल नहीं निकल रहे हैं। बहुत काल तक इसका अभ्यास, ऐसे नहीं 2 महीना 4 महीना तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी रही, फिर कोई बात हो गई, कोई ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ उल्टा किया, मेरी ग्लानी कर दी, मेरे लिए कुछ अपशब्द बोल दिए, तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा व्यवहार रहा तो तपस्वी जीवन नहीं हो सकती। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, तपस्वी जीवन माना एक एक इंद्रिय जीत आत्मा बन जाए, कोई भी इंद्रिय, कोई भी कर्म इंद्रिय, आंख नाक मुख कान हाथ अथवा मन और बुद्धि, जो आत्मा की चैतन्य शक्तियां हैं, जब वो सब कंट्रोल में आ जाएंगी तब हम तपस्वी जीवन कहलाए, तपस्वी कुमार कहला सकते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों को इस वर्ष विशेष ऐसी तपस्या करनी है, चलते फिरते उठते बैठते अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, बस मैं देह से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा की करंट, बाबा की सकास हमारे साथ साथ अपने आप रहेगी। जब हम आत्मिक स्थिति में, निराकार स्थिति में रहेंगे तो बाबा तो ऊपर छत्र छाया के रूप में साथ साथ ही है, और बाबा की सकास, उनकी किरणें जब आत्मा के ऊपर आएंगी तो अपने आप रिफ्लेक्ट होंगी। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको भेजने के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं, ये किरण अमेरिका में गई, ये किरण लंदन में गई, ये किरण अफ्रीका में गई, वो अपने आप जहां जरूरत है जाएगी, जहां पर दीवार नहीं वहां पहुंच जाएगी। इसलिए हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके बाबा की शक्तियों का आवाहन करें, वो शक्तियां यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चारों तरफ विश्व कल्याण की सेवा करेंगी। बहुत बड़ा कार्य परमात्मा को भी करना है, शायद आप लोग विचार करते हो, अभी इतनी बड़ी प्रकृति का परिवर्तन, तमोगुण का परिवर्तन, तमोगुणी प्रकृति, और इस तमोगुणी प्रकृति के पांचों तत्व जो उछल रहे हैं, तूफान ला रहे हैं, और साथ साथ इस वायुमंडल में भटकती हुई कितनी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिले, और साथ में विकारों के अधीन वशीभूत जीव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, इन सब की गति और सदगति हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करें, हरेक इस तमोगुण से निकलकर सतोगुण में पहुंच जाए, हर आत्मा सुखी शांत बने, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार ले, उन सब को देने वाले मास्टर दाता बाबा ने अपने बच्चों को बनाया है, और हम तभी बन सकते हैं जब इस तपस्वी जीवन में रहें, केवल तपस्या। तो हम सब बाबा के बच्चों को तपस्वी मूरत बन करके इस वर्ष ऐसी तपस्या करनी है जो बाबा का मुक्ति धाम का गेट खुले और आत्माएं इन दुखों से मुक्त हो जाए, प्रकृति परिवर्तन हो जाए। ओके, ओम शांति।